نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کی خواہش دل میں رکھتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو، چین سکون ہو، اطمینان ہو، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، اور خوب اللہ پاک مجھے اور میرے جو پیارے ہیں گھر والے ان کو چین اور سکون سے رکھے اور کوئی ٹینشن نہ ہو. تو بھائی یہ جو سوچ ہے صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ جو غیر مسلم کفار ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں. تو لیکن ہر چیز کا اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ رکھا ہے. خواہشات تمنائیں کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن اللہ پاک نے خواہشات اور تمناؤں کے حصول کے کچھ ذرائع اور کچھ ترکیب بھی اللہ پاک نے بتائی ہے، کچھ تدابیر بھی اللہ رب العزت نے بتائی ہے. تو خواہش تو بہت لوگوں کی ہوتی ہے، اسی طرح بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دین پر استقامت حاصل ہو جائے، کہ گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جائے، گناہوں کو چھوڑ دیں. طبعی طور پہ ہر ایمان والا، چاہے وہ گناہگاری کیوں نہ ہو، گناہ کو پسند نہیں کرتا. وہ الگ بات ہے کہ گناہوں کے بشری تقاضے ہوتے ہیں تو نفس اور شیطان سے مغلوب ہو کے انسان پھر گناہ کر جاتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن طبعی طور پہ کوئی گناہ کو اچھا نہیں سمجھتا. تو اکثر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سنت شریعت پر آ جائے، تقوی پر آ جائے، گناہ چھوٹ جائیں. لیکن مجبور ہوتے ہیں بیچارے نفس اور شیطان کے ہاتھوں، جو آج کل ماحول چل رہا ہے اس کے حوالے سے، اس سے ہی پریشان رہتے ہیں. تو کبھی نماز پڑھ لی تو کبھی چھوڑ دی، کبھی قرآن پاک پڑھ لیا تو کبھی چھوڑ دیا، کبھی کہیں بیان میں چلے گئے برسوں میں کہیں، تو دوبارہ سا کچھ گرمی آ گئی تو دو چار دن صحیح چل رہی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ گر پڑتے ہیں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں. تو یہ گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت والی کہانی رہتی ہے، کہاوت ہے نا، گھڑی میں اولیاء اور گھڑی میں بھوت. تو یعنی کبھی گھڑی میں اولیاء بنے، کبھی گھڑی میں شیطان. تو پھر اس کی وجہ سے پھر وہ جو چیز اللہ کی طرف سے آنی چاہیے پھر وہ ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی. پھر اب اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا ذرائع کیا ہیں؟ تو بھائی اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے بچانے کے لیے، دین پر استقامت کے لیے، اور اپنا قرب خاص عطا فرمانے کے لیے، اور چین اور سکون کے لیے، عافیت کے لیے اللہ رب العالمین نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا. اور دنیا ایک شر کا جنگل ہے، شرور کا جنگل ہے، یہاں فتنے ہی فتنے ہیں عجیب عجیب طرح کے. تو وہ تو جنت کا ماحول ہوگا جہاں چین، سکون، راحت، عافیت، اطمینان، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی دشمنی نہیں. وہ تو جنت کا ماحول ہوگا. دنیا میں ہم آئے ہیں تو دنیا میں قدم قدم پہ مختلف قسم کے شرور ہیں. تو یہ چیز ہے. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ بھائی جو بھی وقت ہو سکون اور عافیت سے ہمارا گزرے، دین پر بھی استقامت حاصل ہو جائے، یہاں تک کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. تو اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو سہل کرنے کے لیے، آسان بنانے کا نسخہ تجویز کر دیا. قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، کفار کو نہیں کہہ رہے اللہ پاک. پتہ چلا ایمان لانے کے بعد اللہ پاک دوسری بات جو ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تو اب ایمان کے بعد دوسری چاہت اللہ کی کیا ہے؟ ایمان کے بعد سب سے بڑی دوسری چاہت کہ تم نے اب کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن مبارک ہے، لیکن ایمان لیا ہے، دائمی جہنم سے بچ گیا. اب میری دوسری چاہت کیا ہے؟ اب گناہوں سے بچو، تقوی اختیار کرو. اب یہ تقوی تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لوگوں کو ہوتا نہیں ہے، تھوڑی سی اللہ نے آزمائش رکھی ہے، اور گناہوں میں چونکہ کشش ہوتی ہے اس لیے تقوی مشکل لگتا ہے تھوڑا سا بعض لوگوں کو. تو اللہ پاک تقوی کا حکم دینے کے بعد اس کو آسان کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، کونو مع الصادقین، جو سچے لوگ ہیں، جن کا ظاہر اور باطن ایک ہو، جن کا قال اور حال ایک ہو، ان کی صحبت میں چلے جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، تو تمہیں وہاں سے تقوی حاصل ہو جائے گا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، جو آیت پڑھی گئی تھی، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کی خبر اس کے باخبر لوگوں سے پوچھو. اور بھی کئی آیتیں، رحمان کی خبر اس کے باخبر لوگوں سے پوچھو، خود اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ بات. تو جب آدمی صحبت اہل اللہ میں جب آتا ہے، اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، ان کے غلاموں کے پاس جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تکوینی طور پہ اس کے معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ حضرت والا ہمارے پیارے مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کوئی بادشاہ سرکاری مضمون کے ساتھ کوئی فارم ایشو کرے بادشاہ خود اور بولے کہ یہ میری طرف سے دیا ہوا ایک فارم ہے، اس فارمیٹ کے اوپر جو بھی اپلیکیشن درخواست پیش کرے گا مجھے، میں اس کی داد رفی کر دوں گا، اس کی فریاد رفی کر دوں گا، اس کی پریشانی میں دور کر دوں گا، جو بھی اس کی حاجت ہوگی پوری کر دوں گا، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے خود ہی ایشو کیے ہوئے فارم کو مسترد کر دے، کیونکہ بھائی وہ تو بادشاہ وقت نے جاری کیا اور خود ہی اس نے کیا، تو وہ کیسے اس کو مسترد کر دے گا؟ تو اسی طرح جب بادشاہوں کی شان یہ، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ ہے، تو جو بادشاہوں کو بھیک دینے والا رب العالمین جو شہنشاہ ہے، جب وہ ایک سرکاری مضمون پیش کر رہے ہیں کہ کونو مع الصادقین، اللہ والوں کے پاس جاؤ تو تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، تو پھر اللہ پاک اپنی کہی ہوئی بات کو کیسے مسترد کر دیں گے؟ اس سسٹم میں تو ہم آئیں، پہلے اس سسٹم میں ہم جوائن کریں، اس سسٹم میں ہم آئیں۔ جیسے کوئی بولے میرا A1 گریڈ نہیں آ رہا، کوئی پوچھے بھائی کیوں نہیں آ رہا، محنت کری تھی؟ اس نے کہا محنت تو بہت کری تھی، سارا سال پڑھتا رہا۔ لیکن اس نے کہا بھائی تو پھر تم نے ٹیسٹ وغیرہ دیا؟ اس نے کہا نہیں، کیوں نہیں دیا؟ کہہ رہے میں نے داخلہ ہی نہیں لیا۔ بھائی تو عجیب بیوقوف آدمی، تم نے داخلہ ہی نہیں لیا تو میٹرک میں A1 گریڈ کیسے آئے گا؟ تو سسٹم میں تو پہلے آؤ، پہلے رجسٹریشن کراؤ، 9th 10th میں جب کلیئر ہوگا تو A1 گریڈ آئے گا نا، تو پہلے رجسٹریشن کرا کے ایڈمیشن ہے، پاس ہونا، فیل ہونا، اے گریڈ لینا، بی گریڈ لینا، وہ تو بات کی بات ہے، پہلے اس سسٹم میں تو آؤ۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں اس سسٹم میں پہلے آؤ، یہ صحبتوں کا جو سسٹم ہے، اس کے بعد پھر جو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا، بہت سے لوگ بیعت اور اصلاح سے متعلق بھی بات کرتے رہتے ہیں، بعد میں سسٹم میں آتا ہے تو بیعت ہونا تو خالی ایک سمجھ لیں کہ سنت عمل ہے، بہت مبارک سنت ہے، بہت پیاری سنت ہے، نور اعلیٰ نور، لیکن اس نیت کے ساتھ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا شبری تھانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کسی بزرگ سے، صاحب نسبت سے، کسی سچے اللہ والے سے، دو نمبر لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، کسی اللہ والے سے اس نیت کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرنا کہ میری زندگی میں مجھے تقوی حاصل ہو جائے، گناہ چھوٹ جائیں اور سنت شریعت پر زندگی آ جائے، اس نیت کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرنے کی نیت سے اس شیخ کے پاس آنا جانا، اصلاحی تعلق قائم کرنا، یہ نماز روزے کی طرح فرض ہے، یعنی اللہ پوچھے گا، بیعت ہونے پہ اللہ نہیں پوچھیں گے تم بیعت کیوں نہیں ہوئے تھے، اللہ یہ ضرور پوچھیں گے کہ تم نے کسی سے اصلاح کیوں نہیں کرائی، اگر تم گناہوں سے نہیں نکل پا رہے تھے، تم یہ دلیل دے رہے ہو سو ماحول بہت خراب تھا، تو اسی ماحول میں تمہارے ساتھ کے لوگ وہ بھی تو تھے جو تقوی سے رہتے تھے اور فلاں بزرگ کے پاس جاتے تھے، کیا قرآن میں میں نے ارشاد نہیں فرمایا تھا، کیا تمہارے نبی نے، میرے محبوب بندے اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا، تو اپنے نفس پہ کیوں بھروسہ کیا، تو کیوں نہیں گئے تھے، اصلاح کیوں نہیں کرائی؟ تو اصلاح کے بارے میں کیا ہے بھائی معاملہ، کہ اگر وہ گناہ کسی شیخ کو بھی بتانا جائز نہیں ہے جو آدمی ماضی میں کر چکا، عام حالات میں اپنے گناہ بتانے نہیں چاہیے کسی کو بھی، لیکن وہ گناہ جن کی توبہ کر چکا ہو کسی کو نہ بتائے، لیکن شیخ کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اگر کوئی چھپ کے کسی کو کسی بھی گناہ کی عادت پڑ گئی ہو اور اس گناہ سے نکلنا چاہ رہا ہو عادتاً لفظ، اور وہ توبہ بھی کرتا ہے لیکن 2-4 دن بعد پھر وہی گناہ ہو رہا ہے، تو اب وہ نکل نہیں پا رہا، پھنس گیا، اب اس کے اوپر واجب ہے کسی بھی شیخ سے اصلاح کرائے اور بتائے کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، میری کیسے اصلاح ہوگی، تو یہ کہلاتی ہے اصلاح کروانا۔ پھر شیخ جو بھی بتائے گا، اس کی دعائیں، توجہات، معاملات ہوں گے اس کے، انشاءاللہ چند دنوں میں وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی اصلاحی تعلق قائم کرنا یہ نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ نہیں، نقصان کیا ہوگا، اگر اس نے اصلاح نہیں کروائی، اپنی ناک اونچی کرنے کے چکر میں، VIPیت کے چکر میں کہ میری شان شیخ کے آگے بنی رہے، تو میں اگر یہ میں نے بات بولی تو وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، تو بھائی یہ تو بہت بڑی بیوقوفی اور حماقت جہالت ہے، یہ تو اس سے حضرت والا فرمایا تو وہی بات ہو گئی کہ جیسے کوئی ڈاکٹر سے دوستی کر لے اور روز 2-2 گھنٹے بیٹھا ہے ڈاکٹر کے پاس، لیکن اس شخص کو بواسیر ہوئی اور کبھی اپنی جو پائل سے بواسیر وہ اپنے ڈاکٹر کو نہیں دکھا رہا، اس شرم کی وجہ سے کہ اگر میں نے پائلس کا اگر بولا اس کو مجھے پائلس بواسیر ہے، تو ڈاکٹر کہے گا بھائی ٹھیک ہے آپ میرے کمرہ خاص میں آئے اور آپ کو کپڑے اپنے آدھے اتارنے پڑیں گے، میں انٹرنلی آپ کو چیک اپ کروں گا، اب اس شرم کی وجہ سے کہ یار یہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، مجھے بواسیر ہے، اور خوب دبا کے مرچے والے شامی کباب کھاتا رہے، تو پھر کیا ہوگا، ایک وقت آئے گا آنتوں کا کینسر ہوگا، پھر مر جائے گا، अरे बात सुन, तो अकलमंदी का क्या तकावा है? अगर डॉक्टर से दोस्ती की है भाई, तो दोस्ती का तकावा है डॉक्टर को बताओ कि भाई मैं दोस्त हूँ आपका, लेकिन मेरे साथ ये मसला है, मुझे बचाएं। तो डॉक्टर कोई किसी से नफरत करता है? कोई हकारत आती है उसके दिल में, डॉक्टर के दिल में किसी की? वो बेचारा तो बैठा ही इसलिए इस काम के, नहीं वो क्यों किसी को आखिर समझेगा? वो तो खूब अच्छी तरह से इलाज कर देगा तो बच जाएगी उसकी जान। तो यही मामला रूहानी मालिज अल्लाह वालों का भी होता है। तो उनके पास जो हम जाते हैं और इसलाह करवाते रहते हैं, उनको इसलाह करवानी चाहिए। अगर नहीं, अगर हमने इसलाह कराई और किसी भी वजह से और छुप छुप के गुनाह करते रहे, तो होगा क्या? फिर अल्लाह की तरफ से फिर डायरेक्ट इसलाह हो जाती है। और जब डायरेक्ट इसलाह होती है तो बाज़ दफ़ा फिर चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि अल्लाह इस बात पे मसला समझ लें, इस बात पे अल्लाह को इतना जलाल नहीं आता कि तुमने गुनाह क्यों नहीं किया। मसला समझ लें, बड़ी अजीब बात है। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कुरान पाक में, अगर हम गुनाहों के बदले फौरन के फौरन लोगों को पकड़ना शुरू कर दें और उनको अजाब देना शुरू कर दें, तो रुए ज़मीन पर कोई सांस लेने वाला तुम्हें नज़र ही ना आए कि यहाँ गुनाह किया, वहाँ अल्लाह का अजाब आ गया, तो बचे ही नहीं। तो पूरा निज़ाम कायनात धर्म भरम हो जाए। अल्लाह फरमा रहे हैं मेरा तरीक़ा नहीं है, मैं ऐसे नहीं करता। मतलब ये कि मैं ढील देता हूँ कि शायद अब तौबा कर ले, शायद अब तौबा कर ले, लेकिन जब बंदा अपनी हदों को तोड़ जाता है, फिर उसके बाद अल्लाह का एक निज़ाम तकवीनी तौर पर चलता है, फिर उसकी इसलाह बराह रास्त होती है आसमान से। फिर बाज़ दफ़ा अल्लाह ना करे ऐसा भी होता है, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, अब 6 महीने के लिए बिस्तर पर पड़े हो, तो वो अब इसलाह हुई है अल्लाह की तरफ से। तो ये ख़तरनाक वाली इसलाह है। अल्लाह ना करे कोई बीमारी दे दी, अब बीमारी की तकलीफ उठाना और फिर उस पर थोड़ा थोड़ा सब्र करते रहना, उससे उसका तस्किया हो रहा है, वो पाक हो रहा है बेचारा गुनाहों से। तो भाई ये बड़े ख़तरनाक मामले आते हैं, ये हम कहाँ भुगतेंगे? कुछ नहीं तो कोई जादू कर देगा, कुछ नहीं तो शैतानी अफराद। आज हर घर में लोग बोलते हैं जादू जिन, पता नहीं कहाँ से इतने जिन आ गए, 25-30 साल पहले इतने नहीं सुनते थे। कहिए ना भाई, तो ये हकीकत है, मामला काफ़ी बहुत हो रहे हैं। वजह क्या है कि ये अल्लाह की तरफ से मुख्तलिफ इसलाह के तस्किए के स्टेजेस होते हैं। किसी को ख़तरनाक बीवी दिला दी, ख़तरनाक बीवी जो बदज़बान है ना, शरीफ आदमी लेकिन गुनाहगार है बेचारा, और वो सुबह शाम खूब सुन रहा है बातें उल्टी सीधी बीवी की, करख्त बातें। अब वो परेशान हो रहा है, अल्लाह मैं किस मुसीबत में फंस गया। अब उसका तस्किया हो रहा है, ख़तरनाक बीवी दे दी। फिर उससे मजीद ये भी सोने पे सुहागा हुआ कि 2-3 अब बच्चे भी हो गए। अब वो बेचारा क्या करेगा कि भाई अब तो बच्चे हो गए, अब क्या छोड़ूँ उसको, बच्चे रुल जाएंगे। तो अब बच्चों की खातिर वो कुर्बानी दे रहा है। तो उसका एक मुजाहिदा अल्लाह ने साथ में उसके पख लगा दी, जिसको सब्र कर करके तस्किया उसका हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता गुना झड़ रहे हैं उसको। इसी तरह कोई खातून होती हैं, उनको कोई बदमिजाज, कोई ज़ालिम क्रूरल किस्म का शौहर मिल गया, ज़ालिम जाबिर, अब वो जुल्म सितम कर रहा है भाई, खूब टाइट किया हुआ उसने, अब बेचारी सब्र कर रही है तकलीफ़ में, अब उससे उसका तस्किया हो रहा है। तो भाई अक्सर बताता रहता हूँ, ये ख़तरनाक वाले इसलाह की प्रोसेस हैं, ये ख़तरनाक वाले तरीक़े हैं। कुरान पाक की एक आयत है कि हम इन लोगों को यकीनन आखिरत में बड़े अजाब से पहले दुनिया में छोटा और हल्का अजाब इनके ऊपर ज़रूर भेजेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल फरमाते हैं इस आयत की तशरीह में कि बड़े आखिरत क़्यामत वाले दिन अजाब से पहले हम दुनिया में जो छोटा अजाब देंगे, इससे मुराद दुनिया में अल्लाह पाक गुनाहगार लोगों को परेशानी और मसाइल में मुबतला करते हैं, ये मुराद है हल्का अजाब। तो भाई बात वही है कि अब हमने कोई किसी शेख का किसी ने अव्वल तो लोग साए नहीं रखते बुज़ुर्गों का, ज़रूरत ही क्या है लोगों को, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग माशाल्लाह क्वालिफाइड पढ़े लिखे हो गए। अब तो लोगों का जो शेख पीरो मुर्शिद जो है वो तो मोबाइल बन गया है, तो जिसका जो ज़ौक और शौक़ होता है वो मोबाइल से ही चीज़ें एक्सट्रैक्ट करता है, हासिल करता है, सही या बुरा, सही या गलत। किसी को शहवत का जनून अगर चढ़ता है तो कहता है चलो भाई मोबाइल उठाओ, तो अपनी शहवत का अखराज मोबाइल पे करेगा, वो हर चीज़ देखेगा वो, ठीक है ना। किसी को फिर उसके बाद जब शहवत का भूत उतर जाता है, थोड़ी देर बाद कहते हैं चलो भाई फ़लाँ मौलवी साहब का बयान सुनते हैं, बड़ा अच्छा बयान करते हैं। तो जितने ज़ौक़ और शौक़ हैं वो सारे के सारे एक मोबाइल से पूरे हो रहे हैं। तो इसलिए जो लोग होते हैं वो कहते हैं भाई मैंने तो इतनी मालूमात हासिल करनी है मोबाइल से, मुझे कहीं जाने के बयान में किसी चीज़ की ज़रूरत क्या है, मुझे खुद इतनी मालूमात है, तो फिर तकब्बुर आ जाता है। तो अब ये जो मामलात हैं मोबाइल के, ये तो हैं ही ख़तरनाक, सबको ही पता है इसके ऊपर। तो एक इंशाल्लाह आइंदा अलग से 1 घंटे का बयान करना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा दज्जाली फितना सख्त बन चुका है उम्मत का। तो लोग जो होते हैं वो उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो ये लोग जो मालूमात होती है तो वो फिर कहीं आते जाते भी नहीं है, वो कहते हैं सारी मोबाइल पे हमें मालूमात मिल रही है, हम तो क्यों जाएं। तो ये इस तरह के मामलात हैं। तो होना क्या चाहिए कि कहीं आदमी सही जगह जाए, सोहबत के जो अनवारात होते हैं, सोहबत के जो नूर होते हैं, वो मोबाइल से नहीं मिलते, तो वो वहाँ से नहीं मिलते। तो इसी तरह जो सोहबत में जाने के जो मामलात के ऊपर बात हो रही थी कि जब आदमी इस तरफ आता है तो बुज़ुर्ग से इसलाह जो करवाता है, तो इसलाह अगर नहीं करवाई तो फिर डायरेक्ट इसलाह होती है, बात ये हो रही थी, डायरेक्ट इसलाह तो अल्लाह की तरफ से, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो शेख का या सरपरस्त किसी को अपना रखते नहीं हैं। एक हदीस पाक का खुलासा ये भी है कि आप हमारे प्यारे आके दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख फिर शैतान होता है, शैतान उसका शेख, क्योंकि कहते हैं कि शैतान के पास सिर्फ नूरानी दाव नहीं होते बल्कि हज़ारों जुल्माती खाली जुल्माती या गुनाहों के उसके पास दाव नहीं होते दाव पेश, बल्कि हज़ारों और अनगिनत नूरानी दाव भी होते हैं, नूरानी दाव नेकियों वाले, उनसे भी मुसलमानों को लोगों को पकड़ता है, बर्बाद करता है, उसकी बहरहाल बहुत लंबी तफसीलात हैं। तो ये जो मामला है इसलाह नहीं करवाई क्योंकि कोई शेख नहीं है अव्वल, तो इसलिए अब क्या होगा, डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से इसलाह होगी तकलीफ दे परेशानियों की मसाइब की शक्ल में, क्योंकि ये आदमी ना गुनाह छोड़ रहा है ना तौबा इस्तग़फ़ार कर रहा है ना कहीं से इसलाह करा रहा है, अब क्या होगा बराह रास्त अब इसलाह होगी, ये ख़तरनाक मामला भाई। दूसरा क्या आसान तरीका है कि अपने गुनाहों की इसलाह करवा ले आदमी, तो होगा क्या कि उसकी ज़िंदगी से वन बाय वन एक एक करके गुनाह निकलना शुरू हो जाएंगे, जब गुनाह निकलना शुरू हो जाएंगे तो भाई परेशानियाँ क्यों आएंगी, बहुत बहुत हद दर्जे तक अल्लाह पाक मसाइब और परेशानियों मसाइब और परेशानियों उसकी ख़त्म फरमा देंगे, क्योंकि ये बंदा इसलाह के प्रोसेस में आ गया, आ रही है बात सुन में, जो अल्लाह पाक जो हुक्म दे रहे हैं इसलाह करानी है, तो इसलाह कराने का मतलब है गुनाह ज़िंदगी से निकलना, गुनाह कबीरा का इखराज, जैसे जैसे गुनाह कबीरा निकलते रहेंगे ज़िंदगी से एक वक्त आएगा कि उसको तक्वा कामिल हासिल हो जाएगा, वासिल बिल्ला हो जाएगा, अल्लाह वाला बन जाएगा, वो साहिब नस्बत अल्लाह पाक बना देते हैं। तो अल्लाह और हमारे बीच जो सबसे बड़ी रुकावट होती है जो हिजाबात हैं जो अल्लाह और हमारे दरमियान है वो गुनाहों के, इसलाह कराने से गुनाह निकल जाते हैं, गुनाह निकले फिर जलवे नज़र आएंगे सामने, मंजर सामने नज़र आएगा, जलवे सामने नज़र आएंगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके रूहानी मामलात शुरू हो जाएंगे, वहाँ से प्याम रसानी शुरू होगी, क्योंकि अब वो बंदा ये नहीं है मासूम हो गया अम्बिया कराम की तरह, ये मतलब नहीं है इसलाह कराने का, मतलब ये कि आदतन किसी गुनाह कबीरा में मुबतला नहीं रहेगा, आदतन लफ्ज़ याद रखिए, आदतन किसी गुनाह में आदमी मुबतला नहीं रहेगा, कभी इंसान है ख़ता हो जाएगी वो अलग मामला है, फिर तौबा कर लेगा और टूटे जो अल्लाह से जो राबता है वो दोबारा बहाल हो जाएगा, तो भाई अक्लमंदी का क्या तकाज़ा है, यह आसान तरीका है इसलाह कराने का। और अगर बहुत से लोग शेख रखते भी हैं वैद भी होते हैं लोग, लेकिन इसलाह नहीं कराते, इसलाह तो बहुत लोग कराते हैं, बहुत कम लोग कराते हैं, हज़रत वाला ख़ुद फरमाते थे कि 500 लोग अगर आते हैं तो मुश्किल से 50 लोग भी इसलाह नहीं करवाते, 5 या 10 कराते हैं, तो कहाँ से अल्लाह के वली बनेंगे, कहाँ से मुकर्रब बनेंगे, वो सोहबत अहलुल्लाह और सोहबतों के सोहबत अहलुल्लाह के जो फ़ज़ाइल और फजीलतें वो सही मायने में मुकम्मल जो हासिल होती हैं वो इसलाह के बाद होती हैं, करके देखे कल्ब की हालत पलट जाती है, फिर आदमी को नूर मिलता है अल्लाह की तरफ से जब वो इसलाह कराता है, तो ये मामला है। बिलफर्ज ऐसे ही मर गया गुनाहों से, कहते हैं ना बहुत से लोग दुनिया की परेशानियों से तंग आके कहते हैं कि भाई कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएं, गालिब का शेर था ना, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएं, मर के भी अगर चैन ना पाया तो कहाँ जाएं, बहुत से लोग परेशान हो कहते हैं यार कब इस दुनिया से जान छूटेगी ज़िंदगी से, है ना। तो बात ये होती है कि अगर गुनहगार आदमी मरता है तो भाई ये तो दुनिया की परेशानी तो कुछ है ही नहीं, फिर नज़ा के वक्त से फिर वहाँ धुलाई पिटाई शुरू हो जाएगी, फिर मौत की तकलीफ है, अजाब खबर है, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं कि फिर वहाँ इसलाह होगी, अब जब वहाँ इसलाह होगी तो भाई फिर अजियत, ये तो दुनिया से ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ गई, तो ना यहाँ चैन मिलेगा ना वहाँ चैन मिलेगा, ये सारा बवाल क्यों है, क्योंकि ऐसा आदमी आदतन गुनाह मुबतला रहता था और उसने फिक्र नहीं करी कि मैं अब तक खुलासी क्यों नहीं पा रहा हूँ, हम लोगों में से कोई 30 साल का हो जाता है, कोई 40 साल का हो जाता है, कोई 50 साल का हो जाता है, कोई 60 साल का हो जाता है, कोई 70 साल का हो जाता है, यहाँ तक के मर जाता है वो, लेकिन उसको अपनी इसलाह की फिक्र नहीं होती, गुनहनी ज़िंदगी से गुनाह मेरे खारिज हो जाए, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत मुबारक कम ऐसे लोग होते हैं। तो गुनाह होना इतनी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि गुनाहगार तो हम सब हैं, अल्लाह ये देखते हैं कि इसको फिक्र कितनी हुई, उसने तौबा इस्तग़फ़ार कितनी की, उसने गुनाह से निकलने की कितनी कोशिश करी, कितनी इसलाह करा, नहीं मानता इसलाह नहीं कराता, फिर अल्लाह की तरफ से बाद में सफाई और धुलाई का अमल शुरू होता है, तस्किए नफ्स का अमल शुरू होता है, ये बाद में होता है, फ़ौरन पकड़ नहीं आती, तो ये कितने ख़तरनाक मामलात हो गए भाई। ठीक है। इसी तरह सोबतों के जो फ़ज़ाइल होते हैं, मकसद ये होता है, ये बैत का इस्लाही ताल्लुक़ क़ायम करने का ये अहम बात बता दी कि उसका मकसद ये होता है। इसी तरह आवाम में एक और बहुत बड़ी एक जाहिलाना फ़लसफ़ा है, कहते हैं कि भाई किसी से बैत मत हो, क्योंकि अगर बैत हो गए और फिर अगर तुम दीन पे नहीं चले तो अल्लाह की तरफ से बड़े बड़े अज़ाब आएंगे और तुम फंस जाओगे। अब पूछो भाई ये कौन सी तुम दलील दे रहे हो, ये तो तुमने शैतान के तुम पैरोकार और मददगार बन गए, तो ख़ुद भी तुम नहीं जा रहे हो सोबतों में, बैत नहीं हो रहा और लोगों को भी तुम डरा रहे हो, तो पता चला तुम तो शैतान के चेले और चाटे बन गए, तुम तो उसके काम कर रहे हो, उसका इसके उसके माऊन मददगार बन गए शैतानी कामों में। अरे भाई सोचने वाली बात है, जब आदमी को बैत होता है या असलात किसी से करवाता है, अल्लाह के जिक्र में जा रहा है, बेचारा अल्लाह से डरा हुआ है, खौफजदा है, तो उस पर अजाब आएगा जो आज़ाद ज़िंदगी गुजारेगा, आदतन गुनाहों में हराम काम करता रहेगा, किस पर अल्लाह का अजाब आएगा? एक आदमी ने कोई जानते ही नहीं, किसी बुजुर्ग को वलियों को असलाह को वो जानते ही नहीं, वो तो एक आज़ाद इंग्लिश ज़िंदगी गुजार रहा है जिसकी उसके जिसमें उसके अपने कवानीन चलते हैं, अल्लाह रसूल की बात को तो मानता ही नहीं वो, बल्कि दीन मुखालफत करता है, वो तो मजाक उड़ाता है अकड़ और तकब्बुर की वजह से, और किसी को खातिर में लेकर नहीं आता वो, तो वो जो गुनाह करेगा तो भाई अल्लाह की तरफ से जब कोई सख्ती आएगी तो वो बेचारा जो डरा हुआ है जो अल्लाह के जिक्र में जा रहा है उसको अल्लाह अजाब देंगे, या जो बेचारा बिल्कुल ही आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा है, तो कितनी बेवकूफ़ी की और हिमाकत वाली लोगों की बाज़ लोगों की ये मंतक और फ़लसफ़ा होता है। मतलब ये है कि बैत मत हो नहीं तो फंस जाओगे, वैसे तुम आज़ाद रहो, ठीक है भाई आज़ाद रह के तुम बदमाशियाँ करके देख लो, देखो फिर क्या होता है। भाई गुनाह के ऊपर बवाल है, मसला समझ लें, गुनाह हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है ना, एक्शन टू रिएक्शन, गुनाह का जो बवाल है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो अजाब आएंगे दुनिया में भी आखरत में भी अगर तौबा नहीं की, तो ये तो एक मुसलिम हकीकत, इसका ताल्लुक किसी से बैत होने या ना होने से थोड़ी है, बल्कि बैत होने के बाद तो रहमतें अल्लाह की बरसती हैं। मिसाल के तौर पर शेख को गैब नहीं जानता, शेख आलमुल गैब अल्लाह की बात है, कभी अल्लाह पाक की तरफ से कश्फ इलाम हो जाता है, कभी कोई शेख देख लेता है कि मुझसे इसलाह नहीं करा रहा, हराम कामों में ये लगा हुआ है, तो होता है क्या है, मशायख ने फरमाया कि, और ये भी अल्लाह पाक एक नज़र देते हैं मशायख को, तो वो देख लेते हैं ये अल्लाह की तरफ से इस पर कोई पकड़ आने वाली है और बड़ी सख्त पकड़ आने वाली है, अभी इसलाह करा नहीं रहा, घोला बना हुआ बैठा हुआ है, तो फिर शेख क्या करता है, छोटी सी बात पे या किसी भी बात की वजह से वो सही की उसकी नकीर कर देता है, खूब डांट लगाता है, परख़ उड़ा देता है उसके बाद, तो जो उसकी भी समझ में नहीं आती, यार बात तो ऐसी नहीं थी, दूसरे लोग भी कहते हैं पत्नी हजरत ने या फला शेख ने इसको इतना क्यों डांटा, बात तो ऐसी नहीं थी, अब उनको क्या पता कि अल्लाह पाक क्या किस नज़र से अल्लाह पाक ने उनको क्या देखा, हदीस शरीफ है ना कि बंदा मोमिन की फिराफत से डरो अल्लाह के नूर से देखता है, वो नहीं देख रहा शेख, अल्लाह के नूर से देख रहा है वो, तो जब वो शेख डांट लगा देता है तो वो क्या हुआ, इसका मसला मतलब ये था कि जो अल्लाह की तरफ से जो एक उस पर सख्ती आने वाली थी, शेख ने डांट के उसको रिलीज़ कर दिया, क्लियर कर दी, अल्लाह पाक देख लेते हैं कि भाई जब इसके शेख ने इसकी पूरी जो इसलाह इसकी कर दी, इसके तकब्बुर को उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया, तो अब मैं इसको क्यों सजा दूँ, तो उसकी शेख की डांट ने अल्लाह के अज़ाब से बचा लिया उसको, तो शेख की डांट जो होती है बाज़ दफ़ा इतनी मुबारक होती है, जैसे हज़रत मौलाना शबरी थानी साहब रहमतुल्लाह के एक थप्पड़ ने एक मुरीद को काफिर होने से बचा लिया था, ये पिछले इतवार को भी शायद जिक्र आया था, एक मुरीद था उनका, उसके जहन में शैतान ने पकड़ लिया था वसफ़ा कि बस तुम हिंदू हो जाओ या ईसाई हो जाओ काफिर हो जाओ बस तुम, तो उसने कहा हज़रत हर वक्त ये जहन में रहता है कि इस्लाम को छोड़ दूँ, अगर समझाते रहे इस्लाह करते रहे, इस तरह करते करते तकरीबन 6 महीने हो गए लेकिन उसका वो मसला हल नहीं हुआ मुरीद का, फिर एक बार आया उसने कहा हज़रत बस मैं आपके पास से अब जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा और मैं बस अब मैं काफिर हो रहा हूँ, तो बस वही बात कि बंदा मोमिन की फिरासत से डरो अल्लाह के नूर से देखता है, हज़रत उठे और घुमा के उसके चांटा उड़ा दिया, सही का चांटा लगाया, जब चांटा लगाया तो दूर जाके गिरा, फिर जलाल में कहा अरे कमबख्त कल के बजाय तू आज ही काफिर हो, आज ही तू इस्लाम को छोड़, क्योंकि तेरे काफिर होने से अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं, तू ही सारी ज़िंदगी जहन्नम में जलेगा, इस्लाम का कोई नुकसान नहीं है, तू ही दाइमी जहन्नम में जलेगा, अभी निकल अभी काफिर हो जाके, बस ये कहना तो उसने कहा हज़रत इस्लाह हो गई, वो वसवसा निकल गया। हुआ क्या, बाज़ दफ़ा नहीं होता, शैतान पकड़ा हुआ होता है बंदे को, तो थानी साहब रहमतुल्लाह और दूसरे मशायख फरमाते हैं बाज़ दफ़ा शेख कभी डांटता है या कभी हाथ उठा दिए इसे, थानी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया मैंने उस पर थोड़ी उठाया था, उसके शैतान को डांट लगाई थी, उसके साथ जो शैतान था जो छोड़ नहीं रहा था उसको, या शेख ने जो चांटा मारा था उसको थोड़ी लगाया था, इनडायरेक्टली उसको शैतान को पड़ा था, تو مشائخ کی یہ کرامتیں ہوتی ہیں. تو ہوا کیا کہ ایک تھپڑ کی کرامت کیا تھی کہ دائمی جہنم سے بچ گیا وہ, نہیں تو ایک سال ہو گیا تھا اس نے پکا سوچ لیا تھا میں کافر ہو جاؤں گا. تو جو مشائخ کی جو ڈانٹ اور جو سختیاں ہوتی ہیں اس میں بھی بھلا کی محبتیں اور رحمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو آنے والے جو اللہ کی طرف سے جو تکوینی طور پہ اصلاح کے جو معاملات ہوتے ہیں سختی کے, وہ اللہ رب العالمین ختم فرما دیتے ہیں. جیسے ہم اکثر ایک مثال دیتے ہیں, ہم فریج میں یا کسی بھی چیز میں اسٹیبلائزر لگاتے ہیں. اسٹیبلائزر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی وولٹیج کی کمی بیشی کو اسٹیبلائزر جو ہے اسٹیبلائز کر کے جتنی آگے وولٹیج کی ضرورت ہے, جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنا وولٹ آگے دے گا. تو وہ وولٹیج کی کمی بیشی کو اسٹیبلائزر اپنے اوپر لیتا ہے. وہ تو بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے, بیعت ہونے کے بعد گویا شیخ ایسا اسٹیبلائزر ہوتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان, وسیلہ ہوتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان. کبھی مصیبت آ جاتی ہے تو اللہ والے بتاتے نہیں, سجدے میں روتے ہیں, اللہ ہمارے پاس آ رہا ہے, اللہ پاک تیری ذکر میں, اللہ ہماری علاج رکھ لے. وہ بیچارہ ہمیں اللہ والا سمجھ رہا ہے, تو جانتا ہے ہم اللہ والے نہیں ہیں. سچے جو اللہ والے وہ بھی اسی مضمون سے اللہ سے بات کرتے ہیں. اللہ وہ اللہ سچے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ پاک چونکہ ہم اللہ والے ہیں ہمارے پاس آ کے کہہ رہے ہیں, تو اللہ پاک ہماری اب ہماری آپ عزت رکھیں, آپ ہمیں اللہ ہم اللہ والے ہیں, اللہ پاک اب اللہ والوں کی رکھیں گے تو کس کی رکھیں گے. اللہ والے ایسے تھوڑی بات کرتے ہیں اللہ سے. تو اللہ والوں کا جو مضمون ہوتا ہے کبھی بتاؤں گا اس بارے میں, وہ یہی کہتے ہیں اللہ پاک تو جانتا ہے تو نے ستاری رکھی ہوئی, ہمیں لوگ اچھا گمان رکھتے ہیں, اللہ والا سمجھ کے آ رہے ہیں, اللہ تو جانتا ہے ہم تو کتے سے بھی بدتر ہیں, اللہ پاک تو ان کا جو گمان ہے اس کی لاج رکھ لے, نہیں تو بیچارے ان پریشان ہو جائیں گے, پھر آنا نہ چھوڑ دیں, بیچارہ مصیبت میں آئے ہوئے. تو اللہ پاک ان کی آہو نالوں کو پھر قبول کر لیتا اور پریشانی ہٹا دیتے ہیں, کیونکہ وہ بندہ اصلاح کے پروسیس میں جڑا ہوا ہے چاہے گناہگار سے. ایک شخص آئے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید, اور بہت بوڑھے تھے اور کافی زمانہ ہو گیا تھا حضرت سے تعلق کیے ہوئے. کہنے لگے, رونے لگے, کہنے لگے حضرت زندگی گزر گئی آپ کے پاس آتے ہوئے لیکن حضرت آج تک کبھی مجھے تخوہ نصیب نہیں ہوا. رونے لگے, تو اب تو مرنے کا وقت آ گیا, کب میری اصلاح ہوگی, کب سدھروں گا میں. تو بڑا پیارا انہوں نے جواب, یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہنے کو, کتنے جلالی تھے وہ, لیکن محبت سے کہنے لگے تھانی صاحب, کہنے لگے ارے بھائی کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ, اگر کاملین میں نہیں اٹھائے گئے تو تائبین میں یقیناً انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے, اور کاملین اور تائبین دونوں جنت میں ساتھ ہوں گے. تو بھائی اتنا مبارک سلسلہ ہوتا ہے صحبت کا, اگر آدمی کاملین یعنی مکمل کامل متقی اللہ والوں میں اگر اللہ نے نہیں بھی اٹھایا تو اللہ پاک تائبین میں اٹھا دیں گے. تائبین توبہ کرنے والے, تو محروم یہ بھی نہیں رہیں گے بھائی, تو کاملین اور تائبین دونوں ساتھ ہوں گے. تو پھر کیا غم, تو ان کو تسلی مل گئی, ان کی تسلی ہو گئی. ٹھیک ہے, دیکھیں ہدایت دینا ہدایت نہ دینا, گناہ چھوڑنا گناہ نہ چھوڑنا, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کے اختیار میں, شیخ کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے یا کسی کی اصلاح کر دے. وہ سبب ہوتا ہے اصلاح کا, شیخ کو جیسے ہم نے حال بتایا, شیخ اصلاح نہیں کر رہا, وہ تو اصل جو مزکی اور مربی وہ تو رب العالمین کی ذات ہے, وہ کرے گا. حضرت والا فرما دیتے شیخ کی حیثیت مت دیکھا کرو, یہ کس مقام کا ہے کہ کتب ابدال ہے, چھوٹا ولی ہے بڑا ولی ہے, دروازے مت ناپا کرو, بلکہ دروازے کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے یہ دیکھ لیا کرو. دروازے کے پیچھے اللہ رب العالمین کی ذات ہے, اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو بڑے سے بڑا شیخ غوث کتب کتنا ہی بڑا آ جائے, قطب الاقتاب آ جائے, مرید کی اصلاح نہیں ہو سکتی اگر اللہ کا فضل نہ ہو. قرآن پاک میں اللہ نے یہ بات فرما دی اور صحابہ کرام مخاطب ہیں اس براہ راست اس آیت میں, لیکن قیامت تک اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایک عجیب اصول بتا دیا کہ اے صحابہ تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا, اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا فضل نہ ہو. رسول اللہ امام الانبیاء عقد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اس کے باوجود اللہ پاک تزکیے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ تم میں سے کسی کا تزکیہ نہیں ہو سکتا, کوئی پاک نہیں ہو سکتا ہے صحابہ جب تک کہ میرا فضل نہ ہو. رسول اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کیا ذات ہے آپ وسلم کی, لیکن اللہ فرما رہے ہیں نہیں پاک ہو سکتے, تزکیہ نہیں ہو سکتا تمہارا, اگر میرا فضل ہوگا تو نبی کی صحبت کام کرے گی. تو اللہ نے قیامت تک اصول بتا دیا, حضرت والا نے اس سے بھی کئی بیان کیے کہ بڑے سے بڑا کتب ابدال غوث آ جائے, سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جینانی رحمۃ اللہ بھی اس دور میں اگر آ جائیں, لیکن اگر اللہ کا فضل نہیں کسی بندے پہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے بھی محروم رہے گا, کیونکہ اللہ کا فضل نہیں ہے. ابو جہل اور ابو لہب دیکھتے تھے نا آپ اسلم کو, روز دیکھتے تھے, چھپ چھپ کے قرآن پاک سنتے تھے, دوسروں کو منع کرتے تھے, عاشق تھے آپ اسلم کی تلاوت قرآن پاک پہ, لیکن ایمان نہیں لایا. وجہ کیا تھی, اللہ کا فضل نہیں تھا تو آپ اسلم کی کیا صحبت کام کرتی, روز آپ اسلم کو دیکھ کے بھی ایمان نہیں لا رہے. وجہ کیا تھی, جب اللہ کا فضل ہی نہیں ہے تو کہاں سے ایمان لے کر آ جائیں گے. تو پہلے اللہ کا فضل ہوتا ہے حضرت والا فرماتے تھے, پھر نبیوں کی صحبت کام کرتی ہے, اللہ کا فضل ہوگا پھر شیخ کی صحبت بھی کام کرتی ہے. फिर सारी सोबतें सारी चीज़ें सिस्टम ऑन होगा। फिर तो अल्लाह का फजल मांग के आया करो। हजरत वाला फरमाते थे मेरे पास मत आया करो डायरेक्ट मुंह उठा के, बल्कि अल्लाह से कहा करो अल्लाह तूने हुक्म दिया कुरान पाक में तो हम तेरा हुक्म पूरा करने आ रहे हैं, बाकी इसलाह करना तस्किया करना तेरा काम है, अल्लाह हमें गुनाहों से पाक साफ कर दे। वसीला में अख्तियार कर रहे हैं, सबब अख्तियार कर रहे हैं। वो शेख भी एक सबब के दर्जे में रख रहे हैं, नज़र अल्लाह पर रखनी है, फिर अल्लाह का एक निज़ाम हरकत में आता है, फिर सोबत शेख फ़ायदा देगी, फिर शेख की नज़र से भी काम होगा, शेख की दुआओं से भी काम होगा, उसकी इसलाह से भी काम हो जाएगा। अल्लाह जल्ला जलालहु तआला शान। तो ये जो बात हो रही थी इसलाह से मुतालिक, ये सोबत अहलुल्लाह के फ़वाइद में से, भाई तो सबसे बड़ा शानदार काम क्या हुआ कि आदमी गुनाहों से बच गया, ये सबसे बड़ा सोबत का फ़ायदा है। बाकी इस नियत से मशायख मना फरमाते हैं, इस नियत के साथ आदमी किसी शेख से बैत ना हो कि मेरी माली मुश्किलात दूर होंगी, मेरी बीमारी दूर होगी, या मेरे फलां मसला मेरा हल नहीं हो रहा तो बैत हो जाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा, तो फरमाया ये सारे गैरुल्लाह हैं, जायज़ नहीं है। क्योंकि अल्लाह ना करे अगर ये बैत होने के बाद ये चीज़ें अगर उसकी दुनियावी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई तो भाग जाएगा मुतनफ़र होके कि सब फ्रॉड है, कुछ नहीं होता, मैं बैत हुआ मेरी तो कोई परेशानी दूर नहीं हुई। पता चला कि तुम्हारी नीयत में ही खोटता, भाई इस नीयत से थोड़ी होते हैं। इखलास के साथ इस नीयत के साथ बैत करनी है कि मेरी ज़िंदगी से गुना निकल जाए, तक़वा नसीब हो जाए, फिर इसकी इखलास की बरकत से फिर अक्सर यही देखने में आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुनियावी परेशानियों को भी दूर फरमा देते हैं। पहले इखलास सही हो अल्लाह के इन्हीं मामलातों, और जो दुनियावी परेशानी है उनको भी दिल में रखे, उसकी भी दुआ कराए, मना नहीं है, उसको दर्जा सानवी में रखे, उसको दर्जा सानवी में रखे अल्लाह। और तीसरा भाई, और जो फ़ायदे हासिल होते हैं सोबत अहलुल्लाह में आने के बाद, बैत या इस्लाही ताल्लुक़ कायम करने के बाद, कि पंक्चुअलिटी नसीब होती है, दीन पर इस्तिक़ामत हासिल हो जाती है। इस चीज़ की जैसे लोग कहते हैं जी गुनाह नहीं छूट रहा, तो क्या होता है कुरान पाक की तलावत पाबंदी से होती है, अल्लाह का जिक्र पाबंदी से होने लगता है, दम दुरूद पाबंदी से होने लगता है, एक मामूलात वो जम के करने लगता है। पहले हासिल नहीं थी ये कैफियत, पहले ये तसलसल इस्तिक़ामत दीन उसको हासिल नहीं थी, तो सोबत के बाद अक्सर यही होता है कि इस्तिक़ामत अल्लाह पाक देते हैं, उसको नींद नहीं आएगी आराम से जब तक वो मामूलात पूरे नहीं करेगा। बिल्फर्ज अगर छोड़ेगा मामूलात तो उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा तगयूर आना शुरू हो जाएगा, अजीब सी दिल में घबराहट बेचैनी हो जाएगी, फिर जब तक अपने मामूलात को पूरे नहीं करेगा, कुरान जिक्र अस्कार वो पूरे करेगा, दम पूरी अच्छी तरह से करेगा, फिर नज़रों की पाबंद होने लगती है, गुनाह से बचने लगेगा, तो ये सारी चीज़ें दीन पर इस्तिक़ामत उसको मिलने लगती हैं, फिर उसकी दुआएँ जो हैं वो अल्लाह पाक शर्फ़ कबूलियत का दर्जा देने लगते हैं, उसकी दुआएँ भी फिर कबूल होने लगती हैं। अगर कोई आम मुरीद भी अगर हो और अगर उसको खिलाफत ना भी मिली और शेख ना भी हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी तकवे से रहेगा तो जहाँ जाएगा लोग उसको एक उस तरह से इज्जत करेंगे आम लोग जैसे मशायख की इज्जत की जाती है, लोग उसको भी हजरत करके बात करेंगे, लोग उसकी भी जूतियाँ उठाएंगे, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है वो शेख की ही जूतियाँ उठाए चूँकि उसको खिलाफत मिली हुई, ऐसा नहीं है। बात ये होती है कि अक्सर जो मशायख होते हैं वो मुत्तकी होते हैं, इसलिए उनकी जूतियाँ उठाई जाती हैं, अल्लाह पाक उनके लोगों के दिलों में मोहब्बत इज्जत अजमत डाल देते हैं तकवे की वजह से, खाली खिलाफत या शेख की वजह से नहीं, ये मसला जहन में समझ लें। अगर कोई आम मुरीद भी अगर तकवे से रहेगा या आम इंसान भी जो किसी से ताल्लुक़ नहीं कायम करता और लेकिन अगर मुत्तकी है अगर वो है तो भी अल्लाह पाक उसकी ऐसी इज्जत करेंगे जिस तरह ऐसी इज्जत करवाएंगे लोगों से जैसे मशायख की होती है, चाहे उसका कोई सिलसिला ही ना हो। लेकिन सुन्नतुल्ला यही है कि भाई तकवा आदमी को अक्सर जो है वो अल्लाह वालों से ताल्लुक़ के बाद ही नसीब होता है। एक आलिम थे अभी हैं एक, वो उन्होंने मुझसे सवाल किया, उन्होंने कहा अगर मेरी बात समझ में नहीं आती हम किसी से क्यों इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें, क्यों हम बैत हों। अगर मिसाल के तौर कोई आदमी नमाज कुरान जिक्र अस्कार करता हो और गुनाहों से भी बच रहा हो तो एक गाड़ी वैसी सीधी सीधी चल रही तो क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा भाई देखें, एक होता है सुन्नत, एक होती है सुन्नतुल्लाह और एक होती है कुदरतुल्लाह। तो अल्लाह की कुदरत तो यह है कि अल्लाह पाक बग़ैर सोबतों के भी आदमी को कामिल तकवा दे दे, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ और बग़ैर बाप के पैदा किया ना आदम अलैहिस्सलाम को, ये अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर वालिद के पैदा किया, ये अल्लाह ने अपनी दूसरी कुदरत दिखाई। तो इन्ना लिल्लाहि कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर तो है। तो ये कुदरतुल्लाह अल्लाह की कुदरत एक अलग चीज़ है और सुन्नतुल्लाह अल्लाह का तरीक़ा कुछ और है। तो कुदरतुल्लाह में तो हर चीज़ वाज़े है कि बग़ैर सोबत के भी अल्लाह कहीं से कहीं कुतुब अब्दाल बना दें, ज़बरदस्त तकवा दे दें, कोई ज़रूरत नहीं किसी की, बेशक अल्लाह को कुदरत हासिल है। लेकिन सुन्नतुल्लाह यही रही है 1400 साल से कि तकवे के हसूल के लिए सब ने कोई ना कोई शेख किया। सहाबा कराम आफ़ुसलम से बैत हुए थे, सहाबा के बाद ताबई आफ़ुसलम से बैत हुए थे, फिर उसके बाद तबा ताबईन सहाबा कराम से बैत हुए, फिर इस तरह होते होते सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है। बड़े बड़े उलमा और मशायख जो है जिनका भी आप नाम उठा के पढ़ लें, कोई ना कोई शेख से उन्होंने ताल्लुक़ रखा, जबकि वो ख़ुद इल्म के बहुत बड़ा इल्म का गहवारा थे वो, लेकिन उसके बावजूद सब ने अपने अपने ऊपर किसी न किसी शेख का अल्लाह वाले का साया रखा है। तो भाई कोई राज है ना, कुछ राजें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किताबों से नहीं मिलती, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किताबों से नहीं मिलती। तो होता क्या है कि आदमी फिर अल्लाह पाक करम फरमाते हैं उस पर, उसको इस्तक़ामत दीन हासिल हो जाती है, फिर ये घड़ी में औलिया और घड़ी में भूत वाली बात नहीं रहती। ये नहीं है कि वो मासूम हो जाएगा, हम भी अगर हम की तरह ख़त ही नहीं कि आदतन फिर किसी गुनाह में मुबतला नहीं रहेगा। बिलफर्ज़ अगर किसी गुनाह में मुबतला हो भी गया तो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक अल्लाह से टूटे हुए रबते को बहाल नहीं कर लेगा। कल में उसके अंधेरा आ जाएगा सोबत अहलुल्लाह के बाद, क्योंकि वो नूरानी बन चुका। अब नूरानी जब हो गया और जुल्मत आ गई, अंधेरा कल में आ गया गुनाहों की वजह से, तो वो उसको अंधेरा उसको बेचैन कर देगा। जैसे अचानक हम लाइट में बैठे हैं, हज़रत वाला अजीब मिसाल देते थे, लाइट में हम बैठे हैं और खूब रोशनी आ रही हो, अचानक लोड शेडिंग और अंधेरा हो जाए तो कल में घबराहट होती है, परेशान होते हैं ना, कहते हैं भाई जल्दी फ़ोन करो के एसी वाले को, जनरेटर ऑन करो, यूपीएस ऑन करो, और फिर उसके बाद जब लाइट आती है कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी आ गई, सुकून मिल गया। बिल्कुल जब कोई बंदा साहिब नूर हो जाता है, साहिब सोबत में आने जाने से, किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ कायम कर लेता है, नमाज कुरान जिक्र अस्कार करने लगता है, थोड़ा बहुत तक्वा भी हासिल हो जाता है, अगर कभी गुनाह हो जाता है तो बिल्कुल यही उसके कल्ब की हालत हो जाती है कि कल्ब की हालत जैसे लोड शेडिंग हो गई, अंधेरा हो गया, बिल्कुल उसको महसूस हो जाएगा कि अल्लाह से जो मेरा रबता चल रहा था, अल्लाह से जो मैं ऑनलाइन था, ऑनलाइन लव सही ना भाई आजकल के हिसाब से बात समझाने को, कि भाई ऑनलाइन जो अल्लाह से था उसमें अब नेटवर्क में रुकावट आ गई, अब वो सिग्नल नहीं मिल रहा, ख़त्म हो गई कहानी। तो वो अब जाहरी बात है उसको आदत हो गई है, बेचैन होगा, घबरा जाएगा, तो अंधेरा महसूस करेगा, फिर वो रोएगा पीटेगा, तौबा इस्तग़फ़ार करेगा, अल्लाह पाक रोशनी भेज दीजिए, अपने ताल्लुक माल लगी, अल्लाह दोबारा नूर भेज दीजिए, दोबारा अपना ताल्लुक भेज दीजिए, अल्लाह बेचैन हो रहा हूँ मैं आपके बगैर, आपकी याद के बगैर अल्लाह मज़ा नहीं आ रहा, कुछ ख़त्म हो गया सब कुछ, फिर रोएगा सजदा गाह को आंसू से तर कर देगा, फिर अल्लाह पाक दोबारा अपने नूर अपनी विलायत अपनी दोस्ती की तार का किरण भेज देते हैं, फिर अल्लाह पाक उसकी तौबा कबूल कर लेते हैं, फिर दोबारा उसको कल में सुकून मिल जाएगा, वो रबता बहाल हो जाएगा, कल इदराक कर लेता है, महसूस कर लेता है। ये साहिब नूर बंदों की बात बता रहा हूँ, जब साहिब नूर जब बंदा बन जाता है, फिर जब वो नूर ख़त्म होता है तो उसको पता चल जाता है कि वो नूर नहीं रहा मेरे अंदर, अब उसको नूर का आदि हो चुका, तो नूर को बहाल कराने के लिए फिर तौबा इस्तग़फ़ार करता है वो, ये नहीं है मासूम हो जाए, ख़ता होगी, हो जाती है लेकिन कम होगी, होगी तो फिर दोबारा रो रो के फिर दोबारा बहाल कर लेगा और मुकर्रब बन जाएगा। अल्लाह ने फरमा दिया इन्नल्लाह युहिब्बु तवाबीन, कि मैं तौबा करने वाले को सिर्फ माफ़ नहीं करता बल्कि अपना और प्यारा महबूब बना लेता हूँ। इन्नल्लाह युहिब्बुल तवाबीन, कि तौबा करने वालों को अपना प्यारा और महबूब बना लेता हूँ। बताइए गुनाह करने के बाद तौबा के बाद और अल्लाह का प्यारा हो गया वो, पतला दो मनाजिल और आगे बढ़ गया वो। तो ये मुख्तसर सी सोबत अहलुल्लाह के बहुत फ़वाद हैं भाई, बे इंतहा फ़वाद हैं, यहाँ तक कि आप सरस्त में इरशाद फरमा दिया हुमुल जलासा उल यशका जली सुहम, के जो इनके साथ बैठ गया अल्लाह के जिक्र की मजलिस में, तो कभी भी ऐसा इंसान जो है बदबख्त यानी कम नसीब सिया नसीब नहीं रह सकता, अल्लाह उसकी बदनसीबी को उसकी शकावत को खुश नसीबी से तब्दील कर देंगे। यानी तकदीर में अगर लिखा है बाज़ लोगों की तकदीर अच्छी होती किसी की बुरी होती है, अल्लाह ना करे किसी की बुरी तकदीर हो, अल्लाह ने लिखा हुआ है, लेकिन जो इनके अंदर आ गया ख़त्म। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी में इरशाद फरमा रहे हैं अल्लाह पाक उसकी शखावत को सआदत से तब्दील कर देते हैं, उसकी शर को खैर से तब्दील कर देते हैं। भाई इससे बड़ी क्या बात रहेगी, कहाँ तक बयान करें, बस इसी के ऊपर जो है वो बयान ख़त्म करते हैं बस। आखिर में हज़रत वाला रहमतुल्लाह फरमाते थे ये पाँच अमल बयान कर दिया करो, इसका ताल्लुक वलीउल्लाह बनने से कामिल तक्वा इंशाल्लाह उसको हासिल हो जाएगा बंदे को, और इंशाल्लाह आगे चल के पूरे दीन पर अमल करना आसान हो जाएगा। और इन पांचों माल का ताल्लुक नफली चीज़ों से नहीं है बल्कि फ़राइज़ और वाजिबात से, जो कुरान और हदीस से माखूज़ है। तो पहले तो कुरान पाक तजवीद से पढ़ने का अहतमाम करें, एक डेढ़ महीने की मेहनत है, किसी भी कारी साहब से नूरानी कायदे से पढ़ें तो इंशाल्लाह ताला तजवीद दुरुस्त हो जाएगी कुरान पाक की, बग़ैर तजवीद के पढ़ना गुनाह है। नंबर दो, एक मुठ्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, और दाढ़ियों को मुनाना या एक मुठ्ठी से कम करना, चावल के दाने के बराबर भी अगर दाढ़ी कम करी तो ऐसी दाढ़ी का रखना और मुनाना हराम है, और हराम काम करने वाला कभी अल्लाह का वली दोस्त नहीं हो सकता। मूछें बिल्कुल बारीक रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसकी बड़ी मूछें होंगी मैं उसकी शफात नहीं करूँगा, और मेरे हौज़े कौसर के करीब न आए, और मुनकर नकीर कबर की गुस्से की हालत में आएंगे। नंबर तीन, उसे दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। तो ये सिर्फ बड़ी मूछ का मसला है, बड़ी मूछ का मतलब ये है कि होंठ के ऊपर का जो होंठ का किनारा है अगर चंद बाल भी अगर उसके ऊपर आ गए तो ऐसी मूछ बड़ी हुकुम के बड़ी मूछ के हुकुम में आ जाएगी, और ये सारी वजह लगने का अंदेशा है। तो मूछे बिल्कुल बारीक करें, लेकिन अगर किसी को मूछे रखने का शौक़ है तो कम से कम इतनी मूछे रखें कि जो ऊपर के जो होंठों का किनारा ये बिल्कुल खुला रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे लोग जिनकी बड़ी बड़ी मूछें थी और जो दाढ़ियों को मुड़ाते थे, नागवारी से देख के मुँह फेर लिया और आपने बद्दुआ दी, हलाक और बर्बाद हो, ये तुमने क्या शक्लें बनाई हैं, इतनी नाराज़गी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है। तो रसूलुल्लाह की बद्दुआ में चलता है ऐसा शख्स, तो तौबा इस्तग़फ़ार करें, एक मुट्ठी दाढ़ी रखें, तो रसूलुल्लाह की लानत की बद्दुआ से जब बाहर आएगा इंसान तो परेशानियाँ इंशाल्लाह उसकी फिर ख़त्म हो जाएंगी, दुनियावी भी और उखरवी भी। और टखनों से ऊपर पैंचे रखें, और मर्दों की नहीं, दो सूरतों में टखने खोल के रखना वाजिब है, जब खड़े हों चल रहे हों। माँ असल मिनल काबैनी मिनल ज़ारिफ़िन्नार, ऊपर से आने वाला लिबास जिससे टखने छुपेंगे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। तो पैंट हो, पजामो, शलवार हो, जो भी हो, उसको पैंचों को ऊपर रखें, टखने बिल्कुल वाजिब खुले हुए होने चाहिए। और चौथा अमल जो है वो नज़रों की हिफाज़त करें, तमाम नामहरिम लड़कियों से, औरतों से, साली से, भाभी से, कज़नों से, चलती फिरती खवातीन से, और मोबाइल पे हर तरह से बद नज़री हो, जो साइन बोर्ड वगैरह भी ना देखें, ये सब बद नज़री के ज़िम्रे में आते हैं। और आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कुल लिलमुमिनीन यगुज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी बाज़ निगाहों की हिफाज़त करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें, और आप औरतों से भी कह दें कि मोमिन औरतों से कि वो भी नज़रों की हिफाज़त करें और शर्मगाहों की हिफाज़त करें। तो जो कुरान पाक में अल्लाह पाक हुक्म दे रहे हैं नज़रों की हिफाज़त करें, और लानत की बद्दुआ भी दे रहे हैं आप सल्लम, लानुन्ना नज़ीरा व मंज़ूर अलैहि, अल्लाह लानत फरमा उस पर जो बदनज़री करे और जो अपने आप को बदनज़री के लिए पेश करे। तो लानत में आने के बाद चैन मिलेगा, लोग कह रहे हैं आज़ाद ज़िंदगी गुजारोगे तो परेशानियाँ नहीं आएंगी, गुनाह करोगे तो परेशानी नहीं आएगी, तकवे से रहने की कोशिश करोगे, सोबतों में जाओगे, बैत हो जाओगे तो परेशानी आएंगी। पूछे कोई भाई तो हदीस शरीफ में असलम क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह इस बंदे या बंदी पर लानत फरमा जो बदनज़री करे या अपने आप को बदनज़री के लिए पेश करे। किसकी लानत? रसूल अल्लाह की। तो भाई ये तो आज़ाद लोगों पर बद्दुआ आ रही है तो परेशानी नहीं है, ये रसूल अल्लाह की लानत की बद्दुआ में आ गए। अब जो बेचारा सोबतों में जा रहा है, इसलाह करवा रहा है, नज़रें नीची कर रहा है, या उस पर परेशानी आएगी? तो जब वही बात कि शैतान जब किसी के दिल को पकड़ लेता है, दिमाग को, तो उसको सही बातें उल्टी लगती हैं और उल्टी बातें शैतानी बातें उसे अच्छी लगती हैं। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। तो नज़रों की हिफाज़त करें। और पाँच छः जो मल दिल में गंदे ख्यालात लेकर ना आएँ, लेकिन वो अलग बात है, शैतान डालता रहता है दिल में गंदे ख्यालात का, लेकिन ख़ुद से जानना, ख़ुद से जानबूझ के लाना लाना और जमाना दिल में, वो सही नहीं है। अगर कभी शैतान पकड़ ले, बुरे ख्यालात दिल में डाले, तो किसी जायज़ काम में मसरूफ़ हो जाएं, वज़ू कर लें, घर से बाहर चले जाएं, या किसी काम में मसरूफ़ हो जाएं, दिल को पाक साफ़ रखें, क्योंकि ये बैतुल्ला है, अल्लाह का घर है दिल। तो जिस दिल में गंदे ख्यालात और नापाकियाँ होती हैं, वो अल्लाह पाक ऐसे दिल को अपना क़ुर्ब नहीं अता फरमाते। और ये पांचों अमाल की तौफीक किसी भी अल्लाह वाले से, इसके ग़ुलाम से जहाँ मुनासबत तो वहाँ ताल्लुक़ क़ायम करें, इंशाल्लाह थोड़े अरसे में पांचों अमाल की तौफीक इंशाल्लाह हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, या रब्बे करीम, या अरहमर रहीमीन। या अल्लाह, जो कुछ भी बोला गया, सुना गया, अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह, कहने सुनने में कोई गलती हो गई तो अपनी शान रहमत से बख्श दे, माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमारा मिल बैठना जो तेरी रज़ा तेरी खुशी की नहीं, अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाते। या अल्लाह, हम सब की और हमारे अहल वयाल की कामिल मग़फ़रत फरमा। या अल्लाह, हम सबको ज़िक्र फ़ज़ाइल ज़िक्र के जितने भी अल्लाह पाक दुनियावी उख़रवी जितनी भी फ़ज़ीलतें हैं, अल्लाह सोहबत की, तेरे ज़िक्र की, अल्लाह सब की सब हम सबको अता फ़रमा, हमारे अहल वयाल को अता फ़रमा। या अल्लाह, हाज़िरीन मजलिस को अता फ़रमा। और अल्लाह पाक हम सबको और हमारे अहल वयाल को कामिल तक़वा नसीब फ़रमा, कामिल सुन्नतों पर दवाम अता फ़रमा, हर सुन्नत पर जान लड़ा के अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह, हम सब का खात्मा ईमान पर मुकद्दर फरमा। या अल्लाह, हम सबको तंदुरुस्ती आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमा, दोनों जहाँ की खुशियों के साथ। या अल्लाह, मौत तक कभी किसी का मोहताज ना बनाना, ना जानी तौर पे, ना माली तौर पे, ना किसी भी अंदाज़ में। अल्लाह, अपना मोहताज रखना। अल्लाह पाक, मौत तक अपना मोहताज रखना। या रब करीम, मौत तक अपना मोहताज रखना। या अल्लाह, गैरुल्लाह के दर से बचाना। या अल्लाह, हमारा सर हो और आपका दर हो। या अल्लाह, हमारा सर हो और आपका दर हो, मौत तक अल्लाह ऐसा हाल हमें अता फरमा। या अल्लाह, हाज़िरीन मजलिस में से जिस जिस के दिल में जो भी जायज़ हाजात हैं, अल्लाह तू जानने वाला है, हम सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। जो भी आए महरूम ना जाए, दुनिया भी बना दे, आखरत भी बना दे। या अल्लाह, जिसके दिल में तेरे इश्क की आग ना भी लगी हो, तो अल्लाह तू ज़बरदस्ती उसको अपना जज्ब अता फरमा, अपना आशिक बना, उसे अपना कामिल तक़वा नसीब फरमा। या अल्लाह, या अरहमर रहीमीन, अपने ज़िक्र पाक की बरकत से। या रब्बे करीम, या अल्लाह, जितने भी बीमार हैं उन सबको शिफा कुल्ली नसीब फरमा। जितने भी मुसीबत ज़दा हैं, अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। या अल्लाह, जितने भी मुफलिस नादार गरीब हैं, अल्लाह उनको हलाल से गनी फरमा। या अल्लाह, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं, تمام امت مسلمہ کی ہم سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کی، انڈیا کے مسلمانوں کی، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما، اللہ پاکستان کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، پاکستان کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، کہ اللہ ہمارے ملک کو امن و امن کا گہوارہ بنا دے، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ مکہ مدینہ جانے میں آسانی پیدا فرما، یا اللہ وہاں جو نئی نئی سختیاں اور اخراجات اتنے بڑھا دیے گئے ہیں اللہ ان سختیوں کو ختم فرما دے، یا اللہ اخراجات میں انتہائی کمی کر دے، یا اللہ تاکہ ہر انسان کا جانا، مسلمانوں کا جانا آسان ہو جائے، یا اللہ خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ میرے والد صاحب کی اور ہمارے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.